पृष्ठ 28। अतः जब हम नई कहानी की प्रगति और प्रवृत्ति का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, तब हमारे सामने उसमें स्पंदित विशेषताओं का रूप कुछ इस प्रकार स्पष्ट होता है। एक, वर्तमान कहानी का यथार्थ बोध पूर्वापेक्षा अधिक तीव्र और तीक्ष्ण है। कारण, कहानियों में यथार्थ चेतना के सूक्ष्मति सूक्ष्म रूप उद्घाटित हो रहे हैं। अमरकांत और निर्मल वर्मा ही नहीं, राकेश की कहानियों में भी यथार्थ बोध की सूक्ष्मता और परिवेश की जटिलता पूरी ईमानदारी से अभिव्यक्त हुई है। सूक्ष्मतम अनुभूतियों का पूरा सच्चाई से अभिव्यंजन और कलात्मक बारीकी से अंकन नई कहानी की उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। वर्तमान कहानीकार अनुभूतियों को जो व्यापकत्व देता है, वह संपूर्ण जीवन की सच्चाई है। कहानी की आधुनिकता निर्भर ही इस बात पर है कि उसमें समकालीन जीवन सत्य की व्यंजना व्यापक धरातल पर हुई है। इसमें कहानीकार की निजता का भी पुट है। अतीत के संदर्भों में निरर्थकता पर आज का कहानीकार लज्जावनवनत है। दो, वर्तमान कहानी अपने में ईमानदार बने रहने के कारण उस रेशमी डोर को काट चुकी है जिसकी स्निग्धता कभी उसके गले की शोभा थी और जिसकी सुषमा प्रेम की सतरंगी किरणों के जाल में आबद्ध होकर ऐसी लड़खड़ाती जा रही थी कि भावी मार्ग ही अवरुद्ध हो गया था। आज उसका स्थान बौद्धिक जागरूकता ने ले लिया है। यही कारण है कि यथार्थ की विशिष्ट अनुभूतियों के व्यापक अर्थवत्ता के कारण अत्यंतिक वैयक्तिकता और भावुकता स्वतः ही टूट गई है। निर्गुण की एक शिल्पहीन कहानी, उषा प्रियंवदा की वापसी जैसी कहानियां इसका प्रमाण है। राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की कहानियों से भी यह तथ्य पुष्ट हो जाता है। आज की कहानी में शक्ति तत्व के रूप में तटस्थता की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। इस तटस्थता के कारण कहानियों में एक विशेष मार्मिकता व अर्थवत्ता आ गई है, आती जा रही है। सर्जक सर्जक होता है, वह भोक्ता बनकर आए तो उसकी सर्जना शक्तिहीन क्षीण हो जाती है। अतः आज के कहानीकार असंप्रतिक बोध के कारण अपने अनुभवों व उनके संप्रेषण में अपेक्षाकृत पर्याप्त सफल दिखाई देते हैं। नई कहानी में यह तटस्थता, यह असंप्रति काफी स्पष्ट है। यही कारण है कि राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, नरेश मेहता और अमरकांत आदि की कहानियों में आई तटस्थता ने नई कहानी को कथ्य को वजनी, प्रभावी और शिल्प को सहज प्रेषणीय बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं कि कहानीकार असंपृक्त रहकर भी अपने अनुभूत को पूरे दायित्व के साथ निभा रहा है। पृष्ठ 29। नई कहानी जीवन की कोख से जन्मी है। उसके जन्म की पीड़ा, विकास की वंचना और परिणीति की उपलब्धि सभी कुछ जीवन के पार्श्व में खड़ी है। वह जीवन से दूर नहीं जा पाई है। उसने जिंदगी की तहों में प्रवेश किया है और वहां से उसे जो कुछ मिला है वही सब उसका कथ्य है। परिवर्तित परिस्थितियों में जीवन की जटिलता, परिवेश की त्रासदी और व्यक्ति की पीड़ा व संबंधों को निभाते जाने की वंचना आदि सभी कहानी में बखूबी अभिव्यंजित हुई है। मनुष्य जिस रूप में हमारे सामने है, उसी रूप में उसका महत्व है। यह प्रवृत्ति ही कहानी को वैशिष्ट्य पूर्ण और पाठक को उसके प्रति जिज्ञासात्मक आस्था से भर देती है। शिवप्रसाद सिंह लिखते हैं, मनुष्य और उसकी जिंदगी के प्रति मुझे मोह है, जो अपने अस्तित्व को उबारने के लिए विविध क्षेत्रों में विरोधी शक्तियों से जूझ रहा है। अंधविश्वास, उपेक्षा, विवशता, प्रताड़ना, अतृप्ति, शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार और क्षुद्र स्वार्थांधता के नीचे पिसता हुआ भी जो अपने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हक के लिए लड़ता है, हंसता है, रोता है, बार बार गिरकर भी जो अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ता है, वह मनुष्य तमाम शारीरिक कमजोरियों और मानसिक दुर्बलताओं के बावजूद महान है। एक नोट, कर्मनाशा की हार, विकल्प पृष्ठ 6। 5। नई हिंदी कहानी व्यक्ति के पीड़ा बोध की गाथा है। यह बोध आज आसमान से अचानक नहीं उतरा है, वह तो वातावरण और सामाजिक परिपेक्ष से जन्मा है। इसमें सामाजिक और व्यक्ति पीड़ा का गहरा स्वर है। एक ओर सामाजिक संदर्भों का दबाव है, विविध जलते उबलते प्रश्न हैं, और दूसरी ओर व्यक्ति की अस्मिता खतरे के निशान को छू गई है। उसका मानस विविध प्रकार के दबावों, अभावों और दायित्वों को पूरा न कर पाने की विवशता के बोझ से बोझिल है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति पीड़ा से कराहता है, भीतर ही भीतर खटते जाने के दंश से व्याकुल है और होने न होने, पाने न पाने पर के बीच की अनुलंघनीय देहरी पर खड़ा है, तो आश्चर्य क्या है। संवेदनशील कहानीकार इससे क्षुब्ध है। फलतः कहानी में यदि उसकी व्यथा कथा के सूत्र पिरोए हुए हैं, तो उसे उसकी सर्जकीय ईमानदारी ही कहा जा सकता है। 6. व्यक्ति पीड़ा से ही संबंधित चारित्रिक विकृतियों का भी विकास हुआ है। परंपरा के शव की दुर्गंध से कंपित होकर प्राचीन सामाजिक मूल्यों की अंधता और अविश्वसनीयता से निराश होकर जब व्यक्ति कुछ नया पाने के लिए लालायित हुआ, तो उसके सामने कतिपय ऐसे संदर्भ आ खड़े हुए हैं जिन्होंने उसे स्तब्ध और जड़ताग्रस्त तो बनाया ही, कहीं भीतर से ही छील भी दिया। वह विकृतियों का पुंज पृष्ठ 30 बन गया। नए कहानीकारों ने इन स्थितियों को पहचाना और अपनी कहानियों में स्थान दिया। अनेक ऐसी कहानियों का सृजन हुआ जिनके पुरुष टूटे हुए और विकारग्रस्त हैं, स्त्रियां बिखरी हुई और झटकी हुई हैं। नर नारी के व्यक्तित्व की यह विकृति राजेंद्र यादव की एक कटी हुई कहानी है। किनारे किनारे कमलेश्वर की तलाश, मांस का दरिया, निर्मल वर्मा की दहलीज, पराये शहर में श्रीकांत वर्मा की शव यात्रा, मन्नू भंडारी का तीसरा आदमी, उषा प्रियंवदा की मछलियां, नरेश मेहता की अनबीता व्यतीत व राकेश की जख्म, सेफ्टी पिन व कई एक अकेले कहानियों में देखी जा सकती है। 7. परिवेश के नए रूप के कारण आज मानवीय संबंधों में भी परिवर्तन आ गया है। नर नारी का संबंध मानवीय संबंधों में सबसे ऊपर है। हिंदी कहानियों का आधा भाग इस संबंध को घेरे हुए है। दाम्पत्य जीवन की कटुता, रिक्तता, अकेलापन, अपरिचय, ऊब और उदासी व एक रस्ता की स्थितियों के बिंब समकालीन कहानियों में भरे पड़े हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों की दृष्टि से लिखी गई कहानियों में कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, उषा प्रियंवदा की जिंदगी और गुलाब के फूल, राजेंद्र यादव की मेहमान, भविष्य के पास मंडराता अतीत, मोहन राकेश की एक और जिंदगी, जानवर और जानवर, रविन्द्र कालिया की 9 साल छोटी पत्नी, महीप सिंह की कील, ज्ञान रंजन की कलह और नरेश मेहता की तथापि आदि को उदाहृत किया जा सकता है। इस सूची को और भी लंबा किया जा सकता है। इस वर्ग की कहानियों में व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों व अकेलापन उसका सबके बीच में अपने को मिसफिट पाने की चिंता का वर्णन सूक्ष्म और सांकेतिक शैली में हुआ है। 8. वर्तमान कहानियों में सामाजिक बोध का चित्रण गहराई से हुआ है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव के कारण व्यक्ति जिस खींचतान को सह रहा है, उसका चित्रण परिवेश के साथ सूक्ष्मता से हुआ है। एक ओर परंपरा के मोह और दूसरी ओर नवीन मूल्यों के आकर्षण के बीच मनुष्य टेंशन और टेरर सह रहा है। उसके व्यक्तित्व में त्रासद स्थितियों से उत्पन्न ऊब और हताशा बढ़ी है। आधुनिक कहानी ने इस स्थिति को चित्रण इनामी ईमानी कलम की नोक से किया है। महानगरीय जीवन की भयावहता और विसंगतियों के कारण मनुष्य जिस सीमा तक अकेला और अजनबी हो गया है, उसे वर्तमान कहानी में बखूबी देखा जा सकता है। 9. नई कहानी की उल्लेखनीय प्रवृत्ति के रूप में आंचलिकता की भावना को भी बट्टे खाते में नहीं डाला जा सकता है। नई कहानी जहां महानगरीय परिवेश की कहानी है, वहीं वह शहरी भीड़भाड़ से दूर गांव की जिंदगी के रेखाचित्र भी प्रस्तुत कर रही है। इन कहानियों में धरती का सौंदर्य मुखरित हुआ है तथा पृष्ठ 31 गांव के लोगों की मनोवृत्तियों को पूरी ईमानदारी से उभारा गया है। ग्राम्य प्रकृति के बीच जीवन का सुख दुख ही इन कहानियों का विषय बना है। प्रकृति के चिरंवीन सौंदर्य की छवियां इन कहानियों के कथानक में आई हैं। रेणु तो इस प्रवृत्ति के सफल शिल्पी हैं। उनकी आंचलिक कहानियां बिहार की धरती की गंध और उससे फूटते संगीत की प्रतिध्वनि से सिक्त हैं। शिव प्रसाद सिंह की भैरव पांडे, शेखर जोशी की गुनसाई और मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला कहानियां इस प्रवृत्ति की सशक्त और सफल कहानियां हैं। 10. नई कहानी में उपलब्ध यथार्थवाद त्रिमुखी है, तभी तो वैयक्तिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण पर भी बल दिया जाता है। इस समाजवादी यथार्थवाद और को अमरकांत मार्कंडेय, भीष्म साहनी और श्रीमती विजय चौहान आदि की कहानियों में देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद से प्रेरित होकर लिखी गई कहानियों में बाह्य जगत की सत्ता को अस्वीकृति करके आंतरिक अभिव्यंजना को महत्व दिया गया है। इस प्रकार की कहानियों में मनुष्य के अंतस में खींची और रसची बसी भावनाओं को मूर्तित किया गया है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद से प्रभावित होकर नई कहानियों को में आत्मोपलब्धि पर विशेष बल दिया गया है, किंतु उसकी सृजन प्रक्रिया में आत्मान्वेषण का मार्ग अत्यंत सीमित, संकीर्ण और विषमताओं से पूर्ण है। नई कहानीकार मनुष्य की पशुधर्मी और विकृति प्रवृत्तियों का विश्लेषक भी है और सही कारण के साथ उनका प्रस्तोता भी। यही कारण है कि मनुष्य का घृणास्पद चित्रण करने में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद अत्यंत सहायक होता है। सावित्री नंबर 2, भारती। जख्म, मोहन राकेश। अनबीता व्यतीत, नरेश मेहता। तलाश, कमलेश्वर। नए नए आने वाले, राजेंद्र यादव। तीसरा आदमी, मन्नू भंडारी। मछलियां, उषा प्रियंवदा। और दहलीज, निर्मल वर्मा आदि ऐसी ही कहानियां हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक यथार्थ का संस्पर्श है। कतिपय नई कहानियों में अति यथार्थवाद का स्वरूप भी मिलता है। इसे अंशतः राजेंद्र यादव की एक कटी हुई कहानी तथा प्रतीक्षा में मार्कंडेय की माही और रमेश बख्शी की अधिकांश कहानियों में देखा जा सकता है। 11. नई कहानी में निरूपित यथार्थ का एक रूप वह भी है जो मानवीय नियति के भयावह और जटिल संदर्भों में अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। मुक्ति बोध की कहानियां इसी विशेषता से युक्त हैं। उनकी क्लॉड इथरली एक ऐसी ही कहानी है। यह कहानी एक साथ अनेक स्तरों पर अंतरात्मा और अस्तित्व के संकट को निरूपित करती है। आधुनिक सभ्यता के संकट को अनेक विरोधामासपूर्ण स्थितियों के साथ मुक्ति बोध की विपात्र कहानी में भी देखा जा सकता है। नरेंद्र मोहन ने लिखा है कि जीवन के क्रूर यथार्थ के भीतर से उभरी हुई अस्तित्व संकट के पृष्ठ 32 जबरदस्त आघात देने वाली ऐसी कहानियां हिंदी में बहुत कम लिखी गई हैं। समकालीन कहानीकारों का एक दल संबंधों के जालों को बुनता और तानता रहा है और इसी में अपना महत्व मानता रहा है। इन लेखकों के संबंधों की कहानियां प्रायः यथार्थ की ऊपरी सतहों से जुड़ी हुई होने के कारण यथार्थ की भयावहता का कोई गहरा एहसास नहीं करा पाती। ऐसी कहानियों में संबंधों और स्थितियों के विवेचन और ब्यौरे तो हैं, पर संबंधों और स्थितियों में निहित अस्तित्व की चुनौतियां प्रायः अनुपस्थित हैं। रोमांटिक किस्म के संबंधों की प्रतिक्रिया स्वरूप कहानियां लिखने वाले ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह इसलिए जल्दी चूक गए और अपनी ही रचना रूढ़ियों के सिकंजे में ग्रस्त होकर कंडीशनड हो गए। किंतु इसका यह अर्थ लेना गलत है कि मानव संबंधों को निरूपित करने वाली यह कहानियां लिखी ही नहीं गईं। 12. नई कहानी के अंतर्गत कुछ ऐसी विशेषताएं भी मिलती हैं जो राजनैतिक संबंध संदर्भ और समसामायिक यथार्थ का आवश्यक अंग हैं। राजनैतिक क्षितिज पर घटित होने वाली भयानक घटनाओं और स्थितियों का सांकेतिक निरूपण भी नई कहानी में हुआ है। दूधनाथ सिंह की कहानियों में ऐसे राजनैतिक संदर्भ सरलीकृत होकर आए हैं। देशव्यापी कयास का यथार्थ बिंब हिमांशु जोशी की जो घटित हुआ है कहानी में मिलता है। गिरिराज किशोर की पेपरवेट कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनैतिक बोध और मानवीय स्थितियों के साक्षात्कार को देखा जा सकता है। गिरिराज किशोर की भाषा का मुहावरा अमूर्त या काव्यात्मक या तनावपूर्ण न होकर सीधा, ठेठ और सर्जनात्मक है। वस्तुतः समसामयिक यथार्थ एक जटिल, संक्रमित और संश्लिष्ट प्रक्रिया है जिसका कोई आखिरी रूप नहीं है। यह यथार्थ न तो यथार्थवादी किस्म का है और न मनोवैज्ञानिक ढंग का। 13. यौन संबंधों की जटिलता और उनके बदलाव की स्थिति भी कुछ कहानियों में अभिव्यक्त हुई है। कृष्ण बलदेव वेद की कहानी, त्रिकोण महीप सिंह की गंध और सांत्वना निगम की कहानी बीतते हुए में यौन संबंधों की जटिलता को आकार प्रदान किया गया है। त्रिकोण में पति पत्नी और प्रेमी का नया त्रिकोण है। प्रत्येक मनःस्थिति अलग अलग और बदली हुई है। महीप सिंह की गंध कहानी में यौन अनुभवों का रचनात्मक और संश्लिष्ट रूप देखने को मिलता है। वस्तुतः यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो यौन विषयक विस्फोटक स्थितियों और संबंधों में उत्पन्न तनाव और हताशा को व्यक्त करती है। बीतते हुए कहानी में संबंधों की पीड़ा का रोमानी हैंगओवर नहीं है। इसमें लगावहीन संबंध और लवलेस सेक्स अथवा भावुकता विहीन होकर यौन संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया उद्घाटित हुई है। कृष्ण बलदेव वेद की कहानियों में जो विसंगति और विडंबना मिलती है वह यथार्थ का एक परिदृश्य प्रस्तुत करती है। सब कुछ नहीं शीर्षक कहानी में पृष्ठ 33 यौन स्थितियां निरूपित हुई हैं। इसमें एक ओर पति से अलग हुई औरत है तो दूसरी ओर पत्नी से अलग होकर जीने वाला पुरुष है। दोनों के बच्चे भी हैं। दोनों उन स्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं जिनसे उन्हें विकल्प या रास्ता नहीं मिल पाता है। इसीलिए औरत कहती है, मैं लौटना नहीं चाहती पर फिर भी लौटूंगी क्योंकि और कोई चारा नहीं है। वस्तुतः कुछ नई कहानियों में यौन संबंधों का नहीं, यौन संबंधों के दौरान पैदा हो जाने वाली उस मनोभावना को आकार मिला है जो आदमी को अकेला, आत्मपीड़ित और अजनबी बना देती है। 14. नई कहानी की एक नई दिशा वैयक्तिक चेतना से युक्त है। यह चेतना व्यष्टिवाद से प्रभावित है। इस प्रकार की कहानियां लिखने वालों में अश्क, राजेंद्र यादव, उषा प्रियंवदा, कृष्ण सोवती, मन्नू भंडारी, रमेश बख्शी, प्रयाग शुक्ल और श्रीकांत वर्मा के नाम प्रमुख हैं। अश्क की वैयक्तिक चेतना को पलंग शीर्षक की कहानी में देखा जा सकता है तो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी में इसी व्यष्टिवाद की स्थिति मुखरित हुई है। राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है और अभिमन्यु की आत्महत्या कहानियों में भी वैयक्तिक चेतना को देखा जा सकता है। ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो कि अश्क के व्यक्ति चिंतन में सामाजिकता का पुट अधिक है। निर्मल वर्मा में सूक्ष्मता और तरलता है तो राजेंद्र यादव में बौद्धिकता अधिक है। निर्मल वर्मा की अधिकतर कहानियों को वस्तु रोमांटिक प्रेम के तत्वों से हुई है। इसी से उनमें अवसाद की गहरी छाया है, अनुभूति की विफलता का अंश का भी अपेक्षाकृत अधिक है। मन्नू भंडारी की कहानी कला का मूल स्वर भी वैयक्तिक चेतना से प्रेरित है। यही कारण है कि इनकी कहानियों में या तो व्यक्ति की कुंठाओं का चित्रण हुआ है या फिर रोमांटिक प्रेम का व्यंगात्मक निरूपण। गति का चुंबन और एक कमजोर लड़की ऐसी ही कहानियां हैं। 15. नई कहानियों में स्त्री पुरुषों के संबंधों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अनेक कहानियां संबंधों के बनने की अपेक्षा टूटे हुए संबंधों की कहानियां हैं। संबंधों के टूटने पर टूटे हुए पुरुष और बिखरी हुई नारी का चित्रण नई कहानी की अनुपेक्षणीय विशेषता माना जा सकता है। पिछली पीढ़ी के प्रति अविश्वास, घृणा, अपरिचय, अनिश्चय और अजनबीपन की भावना नई कहानियों में देखी जा सकती है। वस्तुतः नारी एक पहेली है। नई कहानी में नारी और पुरुष के बदलते हुए संबंधों को आकार प्राप्त हुआ है। युद्ध, स्वतंत्रता और बाद के तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकरण की परिस्थितियों, नारी के आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णायक होने की स्थितियों से उत्पन्न मानसिक स्थितियों का चित्रण नई कहानियों में बखूबी देखा जा सकता है। नई कहानियों ने खुलकर स्वीकार किया है कि नारी और पुरुष का संबंध न तो हवाई प्रेरणा का शक्ति स्रोत है और न ही किशोर पृष्ठ 34 जिज्ञासा का। जिंदगी में सभी कुछ मधुर मधुर नहीं होता है, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ दुख भी होते हैं, विद्रोह भी होता है और जीत और हार भी होती है। अतः इन सभी परिस्थितियों को नए कहानीकारों ने स्त्री पुरुष के संबंधों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है, जिनमें स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों के दबे घुटे स्वर भी मुखरित हुए हैं। इस प्रकार की कहानियों में मोहन राकेश की फौलाद का आकाश, निर्मल वर्मा की अंधेरे में तथा लवर्स और मन्नू भंडारी की चश्मे, नशा और तीसरा आदमी कहानियां तो महत्वपूर्ण है ही। रमेश की शबरी, दूधनाथ सिंह की बिस्तर, कमलेश्वर की नीली झील और राजेंद्र यादव की छोटे छोटे ताजमहल और टूटना जैसी कहानियों को लिया जा सकता है। अनेक कहानियों में टूटे हुए पुरुष का भी चित्रण किया गया है। निर्मल वर्मा की सितंबर की एक शाम, राजकुमार की सिमेट्री और सेलर, शिवप्रसाद सिंह की अंधकूप, राजेंद्र यादव की खुशबू, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, अमरकांत की जिंदगी और जोंक, दूधनाथ सिंह की आइसबर्ग और कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं प्रमुख हैं। टूटते हुए पुरुष की तरह ही टूटती और बिखरती नारियों को लेकर भी अनेक कहानियां लिखी हैं। कृष्ण सोवती की बादलों के घेरे, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नों, मन्नू भंडारी की क्षय, निर्मल वर्मा की परिंदे, भीष्म साहनी की सिर का सदका, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा, मोहन राकेश की मिस पाल और शानी की एक संधि कहानियों को लिया जा सकता है। 16. नई कहानी की एक प्रवृत्ति आदर्शवाद भावनाओं से भी प्रेरित है। इन कहानियों में कटु यथार्थ की उपेक्षा की गई है। आदर्शवादी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कहानी लिखने वाले ये कभी स्वीकार नहीं करते कि आज का मनुष्य और उसका जीवन टूटा हुआ है, उसके मूल्य और मर्यादाएं बिखरी हुई हैं। ऐसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, मार्कंडेय और रेणु ने कुछ कहानियां लिखी हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि नई कहानी में जो आदर्शवादी प्रवृत्ति मिलती है वह प्रेमचंद युगीन आदर्शवाद से भिन्न है। इसमें उतनी निर्जीवता और यांत्रिक प्रवृत्ति नहीं मिलती है जितनी उस दौर की कहानियों में मिलती है। यही कारण है कि समय के परिवर्तन के साथ साथ नई कहानी में निरूपित आदर्शवाद यथार्थवाद में परिवर्तित होता गया है। 17. नई कहानी की एक विशेष प्रवृत्ति अस्तित्ववादी चेतना से भी प्रभावित है। अस्तित्ववादी एक ऐसा दर्शन है जिसमें मनुष्य अपने इस अस्तित्व के प्रति सतर्क रहता हुआ जीवन की क्षण भंगुरता को पहचानता भी है और अनेक अनिश्चित स्थितियों में अपने को पराधीन भी महसूस करता है। इस तरह स्वातंत्र की खोज, अस्तित्व के प्रति सतर्कता, अपने आप को बनाए रखने की जिद, शून्यता का अनुभव पृष्ठ 35 और मृत्यु का भय भी अस्तित्ववादी चेतना का महत्वपूर्ण आयाम है। इस दर्शन से प्रभावित होकर लिखी गई कहानियों में मोहन राकेश की कई एक अकेले, कमलेश्वर की तलाश, नरेश मेहता की अनबीता व्यतीत, निर्मल वर्मा की पराये शहर में, रविंद्र कालिया की क ख ग, जगदीश चतुर्वेदी की क्रॉस और ज्ञान रंजन के शेष होते हुए कहानियों को लिया जा सकता है। 18. नगर बोध के अंकन को भी नई कहानी की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आज की कहानी नगर जीवन और नगरीय संस्कृति के तत्वों से अनिवार्यतः जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस युग की अर्थात समकालीन परिवेश में लिखी जा रही कहानी का संदर्भ ही नहीं, रचना संसार भी शहरी है। शहरी जीवन के दोहरे तिहरे और चौहरे दबावों में आकांत होकर वर्तमान मनुष्य अजीब अजूबा बनकर रह गया है। राजनैतिक परिदृश्य का दबाव, यांत्रिक जीवन की विशेषताओं से उत्पन्न दबाव और यौन स्वच्छंदता की विस्फोटक स्थिति के दबाव ने मिलकर नगरीय व्यक्ति को न केवल बाहर से अपितु भीतर से भी तोड़ डाला है। उसका जीवन अस्त व्यस्त और छिन्न भिन्न सा हो गया है। फलतः निरर्थकता की अनुभूति से घिर कर वह महसूस कर रहा है कि प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, मातृत्व बोध और श्रद्धा बोध आदि के युगों पुराने संस्कार अपने स्थान पर को छोड़ रहे हैं। अब तक के स्थापित मूल्य खंडित हो रहे हैं और मनुष्य के सामने विश्रृंखलित स्थितियों की भयावहता ने आकर उसे प्रश्न चिन्ह के जंगल में भटका दिया है, जहां उसे मिला है अकेलापन, अजनबीपन और त्रासद परिवेश। यही नगर बोध की भूमिका है। वह धरातल है जहां खड़े होकर वर्तमान युग का नया कहानीकार अपने अनुभूत नगर बोध को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। यूं तो इस नगर बोध की भयावहता, प्रश्नीलता, अजनबीयत, अकेली मनस्थिति और त्रासद स्थितियों को मूर्तित करने वाले कहानी संग्रहों की कमी नहीं है, किंतु स्पष्टीकरण के लिए राजेंद्र यादव के अपने पार, सिद्धेश के अर्थहीन वह मैं और ज्ञान रंजन के फैंस के इधर और उधर संग्रहों को लिया जा सकता है। इन संग्रहों की कहानियों में महानगरवासी व्यक्ति की कुंठित मनोदशा और संबंधों की निरर्थकता को नगरबोध की भूमिका पर प्रस्तुत किया गया है। सिद्धेश की चेहरे, किनारा और समुद्र गाथा में इस स्थिति को स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। किनारा कहानी में चित्रित औरत की मनस्थिति का चित्रण है। वह अर्थहीनता को भोग रही है, किनारे लग गई है। किनारा शब्द ही खालीपन का अर्थ लेकर आया है। चेहरे एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जो चुक गया है, बीत गया है या रीत गया है। रीतने के कारण ही वह घर और बाहर सभी जगह एक अपरिचित, आत्मनिर्वासित और अजनबी व्यक्ति की जिंदगी जी रहा है। समुद्र गाथा में भी यही स्थिति है। इस प्रकार इन तीनों पृष्ठ 36 कहानियों में नगरीय जीवन में व्याप्त अर्थहीनता या व्यर्थता बोध को निरूपित किया गया है, किंतु निरूपण की शैली और भाषा में वह ताकत नहीं आ पाई है जिससे जीवन व्यापी अर्थहीनता और व्यर्थता का बिंब पाठक के मानस की गहराइयों में तैरने लगे। संभवतः इसलिए डॉक्टर नरेंद्र मोहन को यह लिखना पड़ा है कि भाषागत अर्थ समता की वजह से इस संग्रह की कोई भी कहानी स्थितियों और संबंधों की अर्थहीनता को तज्जनिती बहुरूपीयपन ढोंग सहानुभूति शून्यता का कोई गहरा बोध नहीं जगा पाती है। इसका एक कारण यह भी है कि लेखक महानगर की व्यर्थता और सूचक स्थितियों और अर्थहीन होते जा रहे संबंधों से ऑब्सेस्ड है। इस ऑब्सेशन के कारण ही इन कहानियों में यथास्थितिशीलता है। दरअसल व्यर्थता बोध को अभिव्यक्त करने के लिए जैसी तटस्थ और बेबाक रचना दृष्टि चाहिए, वैसी इन संग्रह की कहानियों में नहीं है। एक नोट: एक, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ, पृष्ठ 121। हाँ, ज्ञान रंजन के पास ऐसी रचना क्षमता अवश्य है जो वर्तमान स्थितियों और संबंधों को यथार्थ और प्रामाणिक अंकन कर सकी है। शेष होते हुए कहानी इस दृष्टि से एक सशक्त रचना है। इसमें शेष होते हुए संबंधों का प्रामाणिक वृत्त निरूपण हुआ है। परिवार के सभी सदस्य आत्मसीमित हैं, एक दूसरे से कटे हुए हैं और कब एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए कभी खींचते हैं, कभी क्रुद्ध होते हैं और कभी रोब जमाते हैं। पिता शीर्षक से लिखी गई ज्ञान रंजन की इस कहानी में भी यही स्थिति है। इसी क्रम में खलनायिका और बारूद के फूल और फैंस के इधर और उधर कहानियों को भी इसी व्यर्थता बोध की भूमिका पर पढ़ा जा सकता है। राजेंद्र यादव की स्थिति इन दोनों कहानीकारों से भिन्न है। मेहमान, रिमांडर, चुनाव, आत्म साक्षात्कार और शहर की यह रात शीर्षक कहानियों में एक ओर तो नगर बोध के बिंब उभरे हैं और दूसरी ओर बदलते हुए संबंधों की स्थिति अंकित हुई है। परिवर्तित मानवीय संबंधों की अभिव्यंजना यादव ने मनोविज्ञान के सहारे की है। उदाहरण के लिए अनुपस्थित संबोधन कहानी को लिया जा सकता है। इसमें एक युवा लड़की सीमा की मनोस्थितियों का मनोवैज्ञानिक शैली में अंकन किया गया है। सीमा की मनोग्रंथि यह है कि वह माँ जैसी है, उसी का प्रतिरूप है। यह ग्रंथि उसके दिमाग में कील की तरह ठुकी हुई है। लेखक ने सीमा की इस ग्रंथि का अंकन विश्लेषण प्रभावी शिल्प में किया है। भविष्य के पास मंडराता अतीत, कहानी में पति पत्नी के संबंधों में आए तनाव व विच्छेद की स्थिति अंकन है। ये पति पत्नी दाम्पत्य जीवन की व्यर्थता को महसूस तो करते हैं, किंतु बच्ची के प्रति असीमित स्नेह के कारण टूटते संबंधों पर यथार्थ करुणाशीलता की चिप्पी भी बड़ी आकर्षक बन पड़ी है। ये सभी नगरबोध के ही आयाम हैं जो नई कहानी का कथ्य बनकर आए हैं।